سلب بلاية قصايا عبادة مقدس تاري خصام
بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے جوانوں کو خراج تحسین قدردانی اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ساتھ ساتھ آج کے اس اجتماع میں شریک ہماری مائیں ہماری بہنیں اور ہمارے جوان و بزرگ ساتھی جو ایک ظالم جابر اور دنیا کے سب سے بڑے شیطان عالمی دہشت گرد امریکہ کے خلاف سڑکوں پر نکل کر اپنے گھروں سے نکل کر یہاں پر جمع ہو گئے ہیں یہ واقعاً میں سمجھتا ہوں پاکستان سے پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے خاص طور پر عالمی شیطان امریکہ کے لیے یہ پیغام ہے جو پاکستان کے اندر در اندازی کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر دخل اندازی کر رہا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر یہی شیطان امریکہ ہے جو دخل اندازیاں کرتا ہے کبھی فوجی چڑھائی کرتا ہے کبھی فوج کے ذریعے دہشت گردی کرتا ہے کبھی سیاسی دہشت گردی کرتا ہے کبھی حکومتوں کو گراتا ہے کبھی اپنے پٹھوں کو لا کر حکومتوں میں بٹھاتا ہے یہی امریکی حکومت ہے جس کے ہاتھ عراق کے اندر مظلوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں یہی امریکی سامراجی حکومت ہے جس کے ہاتھ افغانستان کے اندر مظلوموں کے خون سے رنگے گئے یہی امریکہ دہشت گرد ہے جس نے سرزمین فلسطین پر انبیاء کی مقدس سرزمین پر فلسطین مقدس پر ایک غاصب اور ناجائز جرثوم اسرائیل کو جنم دیا اسی لیے کہا گیا قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا کہ اسرائیل مغرب کا ایک ناجائز بچہ ہے دوسرے الفاظ میں کہا گیا اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے اسی طرح امام خمینی نے بھی امریکہ کے بارے میں جب بات کی تو اسی بات پر زور دیا اور فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر شر مطلق اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے دنیا کے مسلمانوں کو اگر اپنا غم و غصہ نکالنا ہے اگر اپنا غصہ نکالنا ہے تو صرف اور صرف امریکہ پر نکالو یہی وہ بنیادی جڑ ہے یہی وہ دہشت گردی کی جڑ ہے جس نے پوری دنیا کے اندر انسانیت کو کھوکھلا کر دیا ہے
مردہ آباد مردہ آباد
امریکہ مردہ آباد
مردہ آباد مردہ آباد
امریکہ مردہ آباد لہذا سرزمین پاکستان پر آج جس عظیم فرزند پاکستان فرزند اسلام شہید علامہ عارف حسین الحسینی رحمت اللہ علیہ کے فرمان پر ہم اور آپ سب یہاں پر جمع ہیں یہ یقیناً پاکستانیوں کے لیے افتخار ہے ہمیں افتخار ہے کہ جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا اس کو شہید عارف حسینی نے پورا کر کے دکھایا اور آج اس سرزمین پاکستان پر یہ نوجوان یہ نسل نو جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ پاکستان کی مشکلات کا ذمہ دار امریکہ ہے ایران کی مشکلات کا ذمہ دار امریکہ ہے عراق و افغانستان و یمن ہر جگہ پر یہ امریکہ کی دہشت گردی نظر آ رہی ہے لہذا آج میری بہنوں اور بھائیوں ہم یہاں پر جمع ہیں کیونکہ 14 مئی سن 1948 کو اسی امریکہ اور بوڑھے استعمار برطانیہ کی سرپرستی میں سرزمین فلسطین پر غاصب اور ناجائز صہیونی ریاست کو وجود دیا گیا یہ وہ ناجائز صہیونی ریاست ہے جس نے 15 मई एक ही दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर 10 लाख से जायद हमारे फलस्तीनी बहनों और भाइयों को उनकी सरजमीन से बेदखल कर दिया। कई सौ लोग सरेआम वहां पर कत्ल कर दिए गए, खवातीन की इस्मत दरी की गई। ये 15 मई 1948 का दिन था जिस दिन ये सब कुछ हुआ। फिर 16 मई की दो तारीखें हमारे पास मौजूद है। 16 मई सन 1916 में बरतानिया और फ्रांस ने साइक्स पिको मुआहदे के जरिए बैठकर खिलाफत उस्मानिया को तकसीम कर दिया, खिलाफत उस्मानिया को तोड़ दिया। और चंद महीनों के बाद यही बरतानवी साम्राज्य, यही बरतानवी इस्तेमार था कि जिसने बेलफोर डिक्लेरेशन के जरिए फलस्तीन की तकसीम का मंसूबा बनाया। और फिर जब 1948 में इन्होंने फलस्तीन को तकसीम किया तो 16 मई को ही ये अमेरिका दहशतगर्द शैतान बुजुर्ग ही था जो सबसे आगे बढ़ बढ़कर अकवाम आलम से इसराइल को तस्लीम करवाने पे तुला हुआ था। आज भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान पर दबाव है, पाकिस्तान पर अमरीकी और अरब दबाव है। ये हमें कहते हैं कि तुम इसराइल के साथ दोस्ती कर लो, इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम कर लो। कुछ सहाफियों को यहां से इसराइल भेज दिया जाता है, हुकूमत खामोश है। समझ में नहीं आता ये हुकूमत कौन से आइन पर चल रही है, ये बात समझ से बालातर है। ये हुकूमत कौन से कायद की पैरवी कर रही है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया इसराइल नाजायज रियासत है, हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। आज हमारी हुकूमत खामोश है, एक के बाद एक वफ्द इसराइल भेजा जा रहा है। एक फर्द वाहिद पाकिस्तान का एक फर्द जो एक यहूदी मजहब से ताल्लुक रखता है, हकीकत में वो सहूनी है। हम किसी यहूदियत के खिलाफ नहीं है, किसी मसीहत के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहां पर जालिम को सपोर्ट करेगा कोई हम उसको सहूनी गर्दानते हैं। एक फर्द को मैं यहां पर ये सवाल कर रहा हूं और ये आपको भी सवाल करना चाहिए कि एक फर्द को कौन से आइन ने ये इजाजत दी है कि वो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। उसको कौन सा कानून इजाजत दे रहा है कि वो यहां से गासिब से उन्हीं हुकूमत में बैठकर पाकिस्तान का पासपोर्ट लहराकर पाकिस्तान के आइन की तोहीन करे। इसको कौन सा आइन इजाजत दे रहा है कि वो वहां बैठकर 22 करोड़ मुसलमानों की तोहीन करे। हमारा हुकूमत से सवाल है, ऐ हुकूमत वक्त, वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, आप हमें बताइए, आप सरबराह ममलिकत हैं और आप सरबराह हुकूमत हैं दोनों, आप हमें बताएं कि ये कौन से कवानीन है, ये कौन सा आइन है। क्या हम ये तसव्वुर कर लें कि पाकिस्तान में आइन और कानून खत्म हो चुका है? क्या इसी तरह से ये वफ्द इसराइल जाते रहेंगे और आप खामोश बैठे रहेंगे? मैं सिक्योरिटी के इदारों से भी अपील कर रहा हूं कि आप जहां पर जुग्राफियाई सरहदों के मालिक हैं, आपकी जिम्मेदारी जहां पर पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों का तहफ्फुज़ है, साथ साथ आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का भी तहफ्फुज़ करें। अगर पाकिस्तान का नजरिया छीन लिया गया, अगर पाकिस्तान का नजरिया मार दिया गया, उसे कत्ल कर दिया गया, तो फिर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे रहेगा? ये जो नारे बचपन से हमने सुने कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जब आप आइडियोलॉजी को खत्म कर दोगे तो फिर कौन सा मतलब बाकी रहेगा? ये पाकिस्तान के नजरियात पर हमला हो रहा है। जितना यहां पर अदम इस्तेकाम है, जितना यहां पर इंतशार है, मैं इस पर मोतकिद हूं। मेरा ये अकीदा है कि इसके पीछे कोई और हाथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल।
जो अमेरिका का यार है,
लार है गद्दार।
जो इसराइल का यार है,
ये अमेरिका और इसराइल है जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम अक्षरियत का बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान जैसा भी है, हमारा पाकिस्तान है। हमें कोई टेक्नोलॉजी इसराइल से नहीं चाहिए, हमें कोई ज़राअत इसराइल से नहीं चाहिए। आज भी हमारी ज़रई टेक्नोलॉजी इसराइल से बहुत अच्छी है। आज भी हमारी दिफाई टेक्नोलॉजी इसराइल से बहुत ऊपर है। आज भी हमारे पास बहुत सी ऐसी, मैं आपको बता दूं, ये जो कहा गया है इसराइल के सहराओं में गुलाब के फूल उगाए गए, मैं आपको बताता हूं ये आपकी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक तालिब इल्म ने रिसर्च की थी। उस तालिब इल्म को ये हमारा कसूर है, हकूमत का कसूर है कि जब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो उसको अमेरिका यहां से वहां ले गया और उसने ये टेक्नोलॉजी वहां पर दी। तो हमें कौन सा इसराइल की टेक्नोलॉजी का तुम दावा करते हो? इसराइल एक मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। इसराइल इस वक्त सिमट गया है, इसराइल सुकड़ गया है। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमें इन झांसों में ना लाओ। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के अवाम बहुत ही बाशऊर है, वो अपने दुश्मन को पहचानते हैं और यही वजह है कि आज अपने दुश्मन के खिलाफ हम यहां पर सड़कों पर निकल कर आए हैं। मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहता हूं, गजा के अंदर गुज़िश्ता 6 दिन से बमबारी हो रही है, हुकूमत खामोश है, एक बयान किसी वजीर का नहीं आया, वजीर आजम साहब का कोई बयान नहीं आया। अभी कोई अपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ बयान दे दे तो आप देखिएगा सोशल मीडिया पर एक वावेला मच जाता है। लेकिन अफसोस, गजा के अंदर दर्जनों मासूम बच्चे, खवातीन, नौजवान शहीद कर दिए गए पिछले 6 दिन के अंदर। पूरे पाकिस्तान में कहीं से आवाज नहीं उठ रही, हम किस सिमत में जा रहे हैं? 15 मई को दुनिया भर में यौम नकबा मनाया गया, होना तो यह चाहिए था कि 15 मई को पाकिस्तान की सड़कें फलस्तीन के परचमों से लहराती। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी बदबख्ती है कि हम अपने अंदरूनी इख्तलाफात में उलझ गए और हमने फलस्तीन को 15 मई के दिन फरामोश कर दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूं कि आप फलस्तीन पर अपनी पॉलिसी को रिवाइव कीजिए। अगर कोई साजिश अंदरून खाना हो चुकी है, अब भी वक्त है, उसको रोक दीजिए, वरना ये अवाम अपने हाथ आपके गिरेबानों तक लेकर आएंगे, आपको माफ नहीं किया जाएगा। हम यहां से गजा पर होने वाली इसराइली दहशतगर्दी की शदीद मुजम्मत करते हैं। आलमी बिरादरी जो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है, हम उनसे भी कहते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ दो, ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ दो। अगर तुम इंसानी हकूक के अलंबरदार हो तो फिर सबसे पहले फलस्तीन की बात करो, सबसे पहले कश्मीर की बात करो। और आखिर में अगर हुकूमत में बैठा हुआ कोई भी आदमी ये समझता है कि वो इसराइल से दोस्ती कर लेगा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपने कश्मीर को भी फरोख्त कर दिया, आपने कश्मीर को भी इंडिया के सामने गिरवी रख दिया। हम ऐसा नहीं होने देंगे, ना हम फलस्तीन को फरामोश होने देंगे, ना कश्मीर को फरामोश होने देंगे, और अपने दुश्मन अमेरिका के खिलाफ इसी तरह डटे रहेंगे। मैं नारा लगा रहा हूं, आखिर तक नौजवानों से गुजारिश है, हाथों को बुलंद करो, अपने दिल की गहराइयों से दुश्मन को अपने जज्बात, अपने दिल के जो हौसला है, जो सबसे ज्यादा हमारा बड़ा हथियार हमारी हिम्मत है, वो दिखा दो, दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करो।